एक बार की बात है, कि विश्वास के बाद में सुनाता हूं आपको। कृष्णकांत मालवी, ये मालवी जी के भतीजे, ये इलाहाबाद जेल से, जेल में थे अन्य कारणों से, जेल से ट्रांसफर होकर ये बस्ती जा रहे। तो मेरा इनके पास तार आया कि हम ट्रांसफर होकर बस्ती जा रहे हैं, हमारे लिए खाने का सामान आप रेल पर भेज दीजिए। मेरे पास तार आया। तो क्या हुआ कि तार आया प्रेस में। अब तो हमारे प्रेस से और बगीचे में टेलीफोन है। अब वहां पर सवारी मिलती, उस समय मैं था, इस बगीचे में नहीं था, गोरखनाथ से पर दूसरा बगीचा वहां रहता था, वहां न सवारी मिले न टेलीफोन। प्रेस वालों ने क्या भूल की कि तार को पढ़ करके मेरे पास भेज दिया। उनको चाहिए था कि वे व्यवस्था करके भेज देते। अब गाड़ी आने में कुल 15 मिनट की देर, और मेरे पास तार लेके आदमी आया, तो मुझे प्रेस वालों पर बड़ा गुस्सा आया। अपने मन की बात कहता हूं कि ऐसे बेसमझ हैं कि मेरे पास तार भेज दिया, अरे मेरे पास क्या कोई बड़ी चीज रखी है और कोई सवारी नहीं, मेरे पास सामान नहीं, बना हुआ गाड़ी आ रही है। तो इतने में देखता हूं, इतने में मैंने कोई प्रार्थना वार्था नहीं की, इतने में देखता हूं कि दो इक्के आए, और दो इक्कों पर मिठाई पूड़ी साग फल सब भरे हुए, और ये कहा कि बाबू बिंदेश्वरी प्रसाद जी के यहां कोई आज प्रसाद था या क्या था, तो उन्होंने भेजा है। वही इक्के और वही सामान जो का तो मैंने आदमी साथ देके भेज दिया स्टेशन। गाड़ी 20 मिनट लेट आई, और कृष्णकांत जी अकेले नहीं थे, कुछ 16 आदमी थे। 16 आदमियों ने मजे में खा लिया, टाइम पर पहुंच गया। अब ये किसने भिजवाया बताइए। मेरे मन की कल्पना नहीं थी, मेरे मन की कल्पना नहीं थी, मैंने मन में सोचा नहीं था। अगर वो 1 घंटे बाद आता इक्का तो काम नहीं आता, और पहले आ गया होता उसे हम बरसा देते तो काम नहीं आता। इक्के पर आया, साथ लेकर के आया, और गाड़ी लेट हो गई, सबने खा लिया। ये मेरे कहने का मतलब ये कि हम लोग जो है ना, ये अविश्वासी हैं। हमें जो मिलना है और हमें जो मिलना चाहिए उसकी व्यवस्था हमारे लिए पहले से पड़ी हुई रखी है। इसीलिए तो सकाम कर्म करने वाले मूर्ख होते हैं। अरे जो मिलना है, जैसे दुख अपने आप आता है वही सुख भी अपने आप आता है, और उसकी व्यवस्था पहले से पड़ी हुई रखी है। उन्हीं मुलर साहब ने ये बात लिखी, वो ठीक ऐसी ही बात है, इसी तरह की भोजन की। मुलर साहब के अनाथाश्रम में 250 अनाथ। अब एक दिन उनके पास अनाज नहीं, रसोई नहीं बनी, तो 10 बजे घंटी बजती थी अनाथों के लिए आखिरी, तो 10 बजे आगे से बढ़ जाते थे खाने को। पहली घंटी बजी थी 9:45 में, तो रसोईया आया, उसने कहा कि आज तो कुछ बना बनाया है नहीं, हम क्या करें। तो मुरल ने कहा घंटी बजा दो। रसोइये के मन में आया घंटी बजा दे खाएंगे क्या, घंटी बजा दी। जब 5 मिनट कम रहे तो 2 घंटी बचती थी, तब फिर आया, बोले अब क्या करूं, अब तो 5 मिनट बाकी है, बोले बजाओ घंटी। घंटी बज गई, अब आखिरी घंटी बजनी है 10 बजे। 10 बजे वो फिर आ, वो फिर आया, बोले अब क्या करूं। तो कहा पूछते क्या हो, घंटी बजाओ। उसने सोचा कि कैसी इस साहब का मन, दिमाग खराब हो गया है कि ये घंटी बजा दूंगा मैं, और तमाम वो अनाथ विद्यार्थी 250 आगे बैठ जाएंगे, उसको उनको मैं परोसूंगा क्या। बस घंटी बजी, उसने दुजला के बजाई, बोले आज देखना मोहन साहब को, इनको क्या खाने को देंगे। घंटी बजी, अनाथ आगे बैठे और गाड़ियों पर सामान आ गया। उसने ये बताया कि अमुक होटल में पार्टी थी आज, वो पार्टी किसी कारण से नहीं हुई, तो हमारे मालिक ने ये कहा कि भाई 10 बजे से पहले ले जाओ, वहां पर तो काम आ जाए। तो सारा सामान हम लेकर के आए हैं, वो जो का जो सामान परस दिया गया, सबने खा लिया। बताइए ये व्यवस्था किसने की, हमने की, उसने की, मुलर साहब ने की। तो अगर हम भगवान पर विश्वास करें, ऐसी घटनाएं मेरे जीवन में कई घटी हैं, उन्हें कहने की आवश्यकता नहीं है। तो اتنا بتا دیا نا, اتنا بتا دیا کہ میرے جیون میں ایسی ایسی گھٹنائیں گھٹی ہیں, بہتوں گھٹی ہیں, بہتوں گھٹی ہیں, سب جگہ آپ لوگ گھٹی ہوں گی, ہم لوگ دیکھتے نہیں ہیں. تو بھگوان سے پرارتھنا کرنے کی, کامنا کرنے کی آوشیکتا نہیں. اگر بھگوان دیکھتے ہیں اس کو امک چیز دینے میں اس کا لابھ ہے تو پیسے پوسٹ کر کے دے دیں گے. اگر بھگوان دیکھیں گے کہ نہ دینے میں لاگ ہے اس کا لابھ ہے, اس کے بےزتی میں اس کا لابھ ہے تو نہیں دیں گے, اور دور سے ہنستے ہوئے دیکھتے رہیں گے کہ اس کی دوا ٹھیک ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. وہ دوا دیتے ہیں بھگوان, کہیں ویسی کہیں ویسی. تو اس لیے بھگوان دھن بھی دیتے ہیں, بھگوان آ کے نوکر کا کام بھی کرتے ہیں, اور بھگوان دھن کو ہر بھی لیتے ہیں. تو بھگوان سب کچھ کر سکتے ہیں, کرپا پر وشواس کریں. اب تیسرا پرشن ہے, سانپ اور باگ کے منہ میں بھی بھگوان کی کرپا درشن کیسے کریں. یہی بات بھگوان نے کہی ہے, مرتیو سرو ہرس چاہم. یہ بھگوان نے کہا کہ موت میں ہوں. ارے سانپ اور باگ کے منہ میں کیا ہے, موت ہی تو ہے, وہ کھا رہے ہیں نا. تو یہ سمجھے کہ سانپ اور باگ مجھے کھا کے سماپت کر دیں گے اس شریر کو, اور میں بھگوان کے دھام میں جاؤں گا. بڑی کرپا بھگوان کی کہ مجھے اپنے دھام میں بلا رہے ہیں. یہ بھاونا اگر کر لے تو کرپا سمجھے کہ نہیں سمجھے. ارے سانپ اور باگ کا منہ تو موت ہی ہے نا. دیکھ دکھ کا ویش دھرے میں نہیں ڈروں گا تم سے ناتھ, جہاں دکھ وہاں دیکھ تمہیں میں پکڑوں گا جوروں کے ساتھ. ناتھ چھپا لو تم منہ اپنا, چاہے اتی اندھیارے میں لوں گا پہچان تمہیں ایک کونے میں جگ سارے میں. روگ شوک دھن ہانی دکھ اپمان گھور یتی دارون کلیش, سب میں تم سب ہی ہے تم میں, اتوا سب تمہارے ہی ویش. تمہارے بنا نہیں کچھ بھی جب, تب پھر میں کس لیے ڈروں. مرن ساج سج یدی آو تو چرن پکڑ سانند مروں, مرن ساج سج یدی آو تو چرن پکڑ سانند مروں. دو درشن چاہے جیسا بھی دکھ ویش دھارن کرنا, جہاں دکھ وہاں دیکھ تمہیں میں پکڑوں گا جوروں کے ساتھ. ہے پربھو آپ باگ کے منہ میں باگ کا منہ بن کر کے آئے ہیں, آپ سانپ کا زہر بن کر کے آئے. یہ پرہلاد نے کہی جب سانپوں نے ڈسا, تو پرہلاد نے کہا یہ کہ سانپ میں ہمارے بھگوان ہیں. یہ چیز تو وہاں بھگوان کی کرپا آپ اس پرکار مانے. اچھا بھگوان کے لیے پران چھٹپٹانے کیوں کر لگے, ان کی ایکانت لالسا کیسے ہوئی, یہ بڑا سندر پرشن ہے. سب کے جیون میں یہی بات آنی چاہیے. یہ بات اگر آپ کے من میں ٹھیک پرکٹ ہو گئی ہے تو آپ بڑے بھاگیوان ہیں. بھگوان کے لیے پرانوں میں چھٹپٹاہٹ کیسے پیدا ہو, اور بھگوان کے لیے ایکانت لالسا کیسے ہو, یہ پرشن ہی بھگوت کرپا کے سوچک ہے. اگر سچی بات ہے تو ہمارے تو منوں میں یہ پرشن آتا نہیں, ہم تو یہ پرشن رات دن دیکھتے ہیں اور مانتے کرتے ہیں کہ یہ بھگوان کیسے ہمارے سنسار میں ہمارا کام تم پورا کر دیا کرو, ہمارا یوگ کشیم خوب نبھے, کس پرکار سے ہمیں جگت میں سکھ ملے, کس پرکار سے جگت کی وستویں ہمارے پاس رہیں, کس پرکار سے اور آ جائیں اور بڑھ جائیں اور مل جائیں, ہم تو یہی چاہ کرتے ہیں. تو یہ پرشن اگر اتپن کسی کے من میں ہو جائے اور وہ اگر اس بات میں سنلگن ہو جائے کہ میرے پران ہے بھگوان کب چھٹپٹائیں گے آپ کو ملنے کے لیے, یہ سادھن ہے. تو بھگوان کیا کریں گے, بھگوان دیکھیں گے, تھوڑا سا دیکھیں گے کہ بھائی یہ جو لکھتا ہے کہتا ہے یہ چھٹپٹا ٹھیک چاہتا ہے کیا, من میں یہ بیماری چاہتا ہے کیا, یہ بیماری ہے. بھگوان کے امیلن کا جو تاپ ہے, بھگوان کے نہ ملنے کی جو ویدنا ہے, ये वेदना सबसे बड़ी वेदना है, और ये वेदना जिसके हृदय में जागृत हो जाती है वो महान भाग्यवान है। ये हमारे बल्लभ संप्रदाय के महात्मा लोग तो कहते हैं कि भगवान से मिलने के लिए ताप की आवश्यकता है, जब तक हृदय में ताप नहीं होगा भगवान के न मिलने की दुख की आग जल न उठेगी, और वो आग भगवान के मिलन की आग जब हृदय की सारी कामनाओं को वासनाओं को बाहरी सारी ममताओं को फूंक न डालेगी तब तक भगवान नहीं मिलते। सच्ची बात है, सारी कामना वासना सारा ममत्व ये भगवान को मिलने की कामना अगर खा जाए, आग लग जाए, और ये आग अगर सबको स्वाहा कर दे, उस दिन मैंने कहा था कड़ी चीज तो है, भगवान का प्रेम उन्हीं को प्राप्त होता है कि जो सब कुछ जलाकर उसकी खाक को अंग में रमाकर उस खाक पर नाचा करते हैं, उनको भगवान का प्रेम मिलता है। तो जलाना नहीं पड़ता कुछ भी, जो अपनापन जो स्पर्श है उसको जला देना पड़ता है। ये जो ये मेरा इस मेरे में आग लग जाती है, फिर मेरा न कोई रहे और न मेरा बनाने की चाह रहे। हम लोगों की तो ये बात है, हम लोग सारे जगत को खा करके भी फिर भी चाहते हैं और मिल जाए। महाशनो महापापमा देवे वरिणम, भगवान ने कहा ये जो कामना ये महाशन है, इसको खाते खाते इसका कभी पेट भरता ही नहीं, इसलिए ये चाह आपकी बड़ी उत्तम है। और ये चाह अगर है तो भगवान इस चाह को पूरी करने के लिए बाध्य है।
बात सेठों ने विशेषता से सुनाई है, शाम की वक्त में 5 बजे मैं ये बात कहता हूँ, कई बार कही है कि ये जो आज नाम जप हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, एक आनंद हो रहा है, गंगा जी के किनारे महीना महीना रहना हो जाता है, सिवाय शेर जी के और कोई बताओ आप कारण? इसके साथ फिर दूसरे साथ से मिल गए और भी, परंतु खास बात ये शेर जी है, तो ये मूल में शेर जी है, मेरे को भी रखा है तो शेर जी ने रखा है, नहीं तो मैं ही रहने वाला नहीं था, भाई जी को रखा तो शेर जी ने रखा। वे कई बार जाते थे कि मैं तो जाएंगे वहां अपने एकांत में साधन करेंगे, मेरे सामने तो पता है वहां अपने गए थे ना, वो अलीगढ़ के पास क्या हो अपने गए सत्संग हुआ था ना, सब कर्णवास, मेरी ऐसी बुद्धि है और आज भूल गया था, कर्णवास ना भूल गया तब आता नहीं याद। तो कर्णवास सत्संग हुआ उस समय में भाई की कपड़ा लता बांध बेटा बांध करके वहां आ गए थे, कहते मैं तो अब एकांत चार भजन करूंगा। पहले उनका पत्र आया था और शेर जी ने लिखा कि नहीं अपन भगवान को प्रचार कर लू, उनको पत्र के उत्तर में शेर जी लिखते हैं कि भगवान का प्रचार भगवान करेंगे, भगवान के प्रचार करने का भक्त का काम है, भगवान का काम नहीं है ये, इस वास्ते आपको हमारे पुलिस में लगना चाहिए जैसे भक्ति का प्रचार हो, आए तो नहीं भेज दिया पैसे किसी गुरु को चले गए। तो उनको भी शेर जी ने रखा, मेरे को भी शेर जी ने रखा, अरे ये मकान बन गए इतना, ये शेर जी का बनाए हुए, ये एक पौधा विलक्षणता से लगाया सेठा ने। 88,000 ऋषियों की बातें हम सुनते हैं नहीं मा सारण जी ने, परंतु आजकल के जमाने में अगर देखा जाए तो ऐसी बात नहीं है। मैंने पढ़ा है, पुस्तकें पढ़ी है, महाभारत है उसकी महिमा आई है कि कहीं भी है तो वो महाभारत में मिलेगी, और महाभारत में नहीं मिलेगी कहीं नहीं मिलेगी, ऐसी बात महाभारत में आई है। उस महाभारत में आप देखो तो भगवान भी उस सभा में है, भीष्म जी महाराज सुना रहे हैं शांति पर्व और अनुशासन पर्व, उसमें भी देखो तो केवल भजन ध्यान की कीर्तन की मार्मिक बातें बहुत कम मिलेगी, जंगलों का वर्णन है, पहाड़ों का वर्णन है, नीति का वर्णन है, उसमें कूटनीति का वर्णन है, कपट नीति का वर्णन है, किस तरह से राज किया जाए, कैसे किया जाए, खूब वर्णन है। अपने अभी कूटनीति का वर्णन सुना आपने शेर जी से, हमारे राज्य की बात सुनी, पर्वतों के जंगलों का वर्णन सुना, बातें सुनी, केवल भगवत संबंधी बातें होती है। जहाँ भगवान विराजमान है उस सभा में, और भीष्म जी महाराज से भगवान कह के आ तुम सुनाओ, वो सुना रहे हैं। दो दो पोथा महाराज इतने बड़े अनुशासन और शांति पर, उनकी कथाएं आप पढ़ करके देखो। मूल शेर जी का संक्षेप किया हुआ है, उसमें तो बहुत ऐसे छांट दिए, सत शेर शेर लिया है, पर मूल आप देखो ना तो आपको पता लग गया। मार्मिक बातें ही विशेषता से चलती है अपने, जिसमें लोग ये तो कह देते हैं कि हम लोग सब समझते नहीं, पर तो ये नहीं कह सकते कि फालतू बातें होती है, कोई नहीं कह सकता। हो जाए तो हमारा आदत के कारण से हो जाए बीच में, पर आदत भी वैसी नहीं है विशेष, थोड़ी बहुत कहीं आधी बात चल रही। विशेष मर्म की बातें है, सिवाय सेठ जी के और जगह मिली नहीं है। अब अपना नाम हो जाए, अपने चित्र की, अपने चरित्र की और अपनी महिमा की बात ही ज्यादा होगी। शेर जी के विरुद्ध रहा, नाम के बड़ी में रहा, चरित्र में रहा, चित्र के विरुद्ध में रहा, तो ऐसी बात है। विरोध की भीतर से चाहने वाले बहुत कम आदमी, संतों में जितने हुए, संप्रदाय जितने हुए, उन संप्रदायों में भी आप देखो तो आचार्यों की गुरुओं की महिमा मिलेगी ज्यादा, शेर जी की नहीं मिलेगी। शेर जी को तो भगवान को मानो, भगवान में चलो, सब किस तरह से भगवान में लग जाए, केवल इसी बात को लेकर के गीता प्रेस खोला। जैसे सस्ते से सस्ते दामों में लोगों को सरल से सरल बड़ी गहरी बातों का साहित्य मिल जाए, घरे बैठे पे सत्संग कर रही, इस बात को लेकर के गीता प्रेस खोला। गीता प्रेस और बात के लिए नहीं, केवल इस बात के लिए लोगों को अच्छी बातें मिल जाए। तो शेर जी तो मूल में है, मैं भी आप लोगों बैठा हूं यहां पर, तो ये बैठा हूं शेर जी घर में। शेर जी के रहते हुए भी मन में आई थी, उछड़ आया था कि चल रहे यहां से, शेर जी के रहते हुए आई थी, और शेर जी के बाद मैं यहां रह जाऊं ये विचार ही नहीं था, विचार ही नहीं था हमारा। एक बात सभा में कह दें, जरा थोड़ी कर ली तो है, पर आप क्षमा करेंगे सभी। पटवारी थे, मैं था, घनश्याम जी थे, एक तो और कोई एक दो आदमी थे, पटवारी जी को याद हो तो बता दो भाई, कौन है? मदन लाल जी चूड़ी वाला थे, और एक दो कोई अन्य याद नहीं है, ये थे मदन लाल चूड़ी वाले थे, शेर थे, मैं था। तो शेर जी कभी कभी विनोद किया करते थे, तो उन्होंने एक विनोद में बात पूछी कि आप बताओ मेरा शरीर रहे न रहे तो क्या करोगे, कैसा विचार है आपका? तो घनश्याम जी तो बोल उठे कि ऐसा होगा ही नहीं, आपका शरीर रहे चला जा रहा, हमारा शरीर रहे होगा, होना ही नहीं है, ये तो तब हो ना जाओगे, शरीर जाने के बाद हम रहे तो प्रश्न होता है। घनश्याम जी बात की और मेरे को पूछा क्या बात है, तो शेर जी क्या होगा और कहां जाऊंगा पता नहीं, पर इस समुदाय में तो नहीं रहूंगा, ये जो आपका समुदाय है ना इसमें मैं नहीं रहूंगा, कि ये बात नहीं रखनी है, नहीं रखेंगे। उसी वक्त कह दिया ये बात नहीं रखनी, मैं नहीं रखेंगे इस बात को। तो अब जो सेठा बात बैठा हूं, किस कारण बैठा हूं, मेरे प्रतिकूलता कितनी आई है आपको पता नहीं है, बहुत प्रतिकूलता आई, इसका अर्थ नहीं है यहाँ आती है और जगह प्रतिकूलता नहीं आती, अनुकूलता पता सब जगह आएगी, जहां कहीं जाओ अनुकूलता मिलेगी प्रतिकूलता भी मिलेगी, परंतु यहाँ टिका बैठा हूं केवल शेर जी के वचन से कि ये बात नहीं रखनी। उनको पूछो पटवारी जी को ये बात कही थी, क्या कही थी, कि ये नहीं रखनी, शेर जी ने कहा ये बात नहीं रखनी, वो नहीं रखेंगे। तो कितनी आई बैठा हूं नहीं, तो ये सत्संग चल रहा है उसे मूल में सेठ है, मैं भी सुनाता हूं उसके मूल में सेठ है। शेर जी में बहुत विलक्षणता थी, उनके लेख देखे पहले पहले तो कल्याण में लेख आते थे, तो मैं इतना ही समझता था कि कल्याण में जैसे दूसरे लेखक है संत महात्मा विद्वान पंडित, ऐसे एक ये भी लेखक है। गीता प्रेस से इनका संबंध बिल्कुल हमारे गंध नहीं थी, तो गीता प्रेस जैसी संस्था चलाना अरे पता ही नहीं लगे लोगों का कि मूल में कौन है, ये कहां मिलेंगे चीज। तो शेर जी से ये बातें मिली, मैंने पुराने आचार्य हुए श्री रामल आचार्य, वल्लभ आचार्य, कृष्ण स्वामी, कई आचार्य हुए चैतन्य महाप्रभु आदि, उनके ग्रंथ और ग्रंथ देखा मैंने, उनकी बातें हुई तो बड़े कल्याण करने वाले, उद्धार करने वाले, महान राजमार्ग बताने वाले ये महापुरुष हुए, आचार्य हुए। इनके मत के अनुसार चले तो कल्याण में कोई संदेह नहीं मानता हूं मैं, परंतु उनमें देखा तो एक एक विशेषता है, जैसे ज्ञान मार्ग की विशेषता श्री शंकराचार्य को मिलेगी, ऐसे आपको दूसरे आचार्य को नहीं मिलेगी। भक्ति की क्यों मिलेगी रामानुजाचार्य मिलेगी बहुत तरह से, और चैतन्य महाप्रभु में बहुत विलक्षणता से मिलेगी, परंतु ज्ञान मार्ग नहीं मिलेगा। और योग मार्ग तो लुप्त ही हो गया। गीता के उपदेश के समय भगवान कहते हैं एवं परंपरा प्राप्त विमुख राजर्ष योग सकाले ने अमाता योगो नष्ट, उस समय ही लुप्त हो गया था, बहुत जानते नहीं थे। भगवान के समय भी 5000 से ऊपर वर्ष उसको हो गए, उस समय भी योग मार्ग लुप्त था। और आज भी कर्मयोग की बात आप कहीं सत्संग सुनो, कहीं पुस्तक पढ़ो, कहीं व्याख्यान सुनो, ज्ञान मार्ग की सुनो, भक्ति मार्ग की सुनो, मैं योग मार्ग की नहीं मिलेगी। कर्मयोग के तत्व को जानने वाले बहुत कम, ग्रंथ बहुत कम, ग्रंथों में नहीं मिलती ऐसी बातें, इस सत्संग में मिलती है। कौन सा शेर जी का, मेरा नहीं कहता हूं मैं, मेरी व्यक्तिगत, मैंने तो शेर जी से सीखा है। मैं यहां आया हूं सीखने के लिए, मैं वक्ता बनने के लिए नहीं आया था। शेर जी ने कहा सुनाओ, तो शेर जी ये जवाब दिया कि मैं सुनाने से तृप्त हो गया हूं, सुनाने से तृप्त हो गया हूं, धाप गया हूं, कथा सुनाई है, सप्ताह सुनाई है, गाना बजाना सुनाया है, जागरण किए हैं, मैंने अकेले ने एक पेटी देख मैं हूं जागरण पूरा सारे जा। तो ये चीजें सुनाने से मैं तृप्त हुआ हूं, सुनाने की मेरी भूख नहीं है। शेर जी को ये जवाब दिया, शेर जी ने सुनाओ ये भी साधन है, तो सुनाएंगे। ये सुनाने की प्रवृत्ति शेर जी कारण से ही हुई है, नहीं तो मैं तो उपराम हो गया था सुनाने से। घने सुना दिया, पद भी सुना दिए, व्याख्यान भी सुना दिया, कथाएं भी सुना दी, सब कुछ कर दिया। अब तो केवल साधन करने की मन में है, इसी को लेकर आया हूं सेठ। कई बार कह सेठ जी ने सुनाओ, मैंने सेठ जी ने कहा सेठ जी मैं सुनाने का अधिकारी नहीं हूं, बातें वही सुना सकता है जिसको अनुभव हो, मैं जानता नहीं हूं, पुस्तकों के द्वारा जानता हूं, परंतु वास्तव में अनुभव की बात है वो विलक्षण है। तो उसके हुए बिना चौथे पर चीने बिना गुरु बनो मत कोई, जब तक उस तत्व को न जान जाए तब तक उसको गुरु बनने का अधिकारी नहीं है। तो सुनाना एक तरह से गुरु बनना है। मैंने कहा शेर जी से मैं अधिकारी नहीं हूं, अधिकारी नहीं रहता शेर जी ने बात विलक्षण कही कि जो अधिकारी नहीं मानता वही अधिकारी है, जो अधिकारी मानता है वो अधिकारी नहीं है। मेरी दृष्टि नहीं कि मैं व्याख्यान दू, मैं सुनाऊ, करूं ऐसा, पढ़ना पढ़ाना मैंने किया, पढ़ा भी हूं और पढ़ाया भी है और सुना भी है, सुनाया भी है, सुना भी है, ये मेरे किए हुए काम है, देखे हुए है। और कई बातें देखी मैंने, ज्यादा इतनी बड़ी उम्र नहीं हुई पर उस उम्र में मैंने कई बातें कर ली, देख लिया। अंत में यही बात साधन करना पसंद, ध्यान करना पड़े। और अब तो कोई ऐसा दिखा नहीं मेरे को कि जिनके पास जाकर मैं सीखूं। साधुओं ने विरोध किया कि साधु बनकर गृहस्थी के पीछे पड़े, मन में ऐसी बात मिली नहीं। ये नहीं कहता हूं है नहीं, ध्यान देना, मेरे को नहीं मिली, मेरे को ना गृहस्थ मिला ना संत मिला कि जिसमें मेरे को संतोष हो जाए। सब तरह से क्या कर्म योग है, क्या ज्ञान योग है, क्या भक्ति योग है, अपनी अपनी महिमा सब ग्रंथों में मिलेगी। ज्ञान योग की महिमा ग्रंथों में खूब मिलेगी, उनमें सब आपके भक्ति और योग ये सब साधन रूप में मिलेगी। ऐसे भक्ति योग की महिमा मिलेगी तो उसमें ज्ञान वान में उतना नहीं मिलेगा, पर सेठ हमें तीनों बातें मिलती है। तो हमारे लिए शौक कोई मुक्ति का मार्ग हो तो हम सबको जानना चाहते हैं, तो सेठ जी के पास आने से संतोष हुआ। गुरु एक और बात बताओ, ये ज्ञान मार्ग की भक्ति मार्ग की बातें सुनी और पुस्तकें पढ़ी तो मन में आया कि ये पक्षपाती है। ग्रंथों के ऊपर ये बात हुई कि ये भक्ति के पक्षपाती है। ज्ञान मार्ग की सुनी पढ़ी, पढ़ाई की है मैंने ज्ञान मार्ग की काफी तक आचार्य तक, तो उसमें देखा यही पक्षपाती है ज्ञान मार्ग की। शेर जी जब बातें सुनी तो मेरे एक प्रकाश मिला। शेर जी का पक्षपाती नहीं है, उनको इसी से अनुभव हुआ, इस वास्ते उन्होंने इस बात को वर्णन किया है। उनके पक्षपाती होता वो ज्ञानी नहीं होता, अरे ज्ञानी होता उसके पक्षपात नहीं होता, इनमें पक्षपात नहीं है। तो ये पक्षपात की भावना मेरी भी शेर जी के सत्संग में मिट गई। नहीं मेरी धुची हुई थी बात कि अपनी अपनी बात कहते हैं, अपनी बात सभी कहते हैं, क्या नई बात है, ये कोई तथ्य थोड़ी है, ये सत्य नहीं है। शेर जी कारण से कहा नहीं ऐसे नहीं है। बर्ण से सत्संग होता था, दोपहर में जा रहे थे जंगल में, वहां जंगल में ध्यान और कराते शेर जी सत्संग कराते थे दोपहर का समय। तो वहां मैंने पूछा शेर जी ये रामानुजाचार्य है, वल्लभाचार्य है, इधर शंकराचार्य है, बड़े बड़े आचार्य, उनके ग्रंथ है, उनकी संप्रदाय है, उनके चलते हैं लाखों की तादाद में उनके शिष्य संप्रदाय है, उसमें बातें तो चलती है, तो उसमें किसी ने भी ये तीनों को नहीं कहा कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग, अरे आपने कहा तो आपने कहां सीखी है। शेर जी से पूछा मैंने चलते हुए आपके कौन आदर्श है जिसको लेकर, हमारे आदर्श है वेद व्यास, ये आचरण कोई आदर्श नहीं, वेद व्यास जी महाराज से ये तीनों बातें मिलती है हमारे ज्ञान योग की कर्म योग की भक्ति योग की, वेद व्यास महाराज का नाम दिया शेर जी ने। तो अनादिकाल से ये मार्ग है और भगवत अवतार है वेद व्यास जी, कोई मामूली नहीं है, उनकी रखी हुई है, उनके अनुसार गीता है ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग कितने जितने योग है। वो मैंने यहां भी कहा कि योग में सब एक हो जाते हैं, भक्ति भी ज्ञान भी योग भी सब मार्ग योग मार्ग में, योग समता का नाम है। ये गीता का योग विलक्षण है, दूसरा योग मिले तो चित्तवृत्तियों के निरोध का योग, इतनी बात फैली हुई है दुनिया में, कहीं करोगे मन नहीं लगा तो कुछ नहीं। तो मन लगाने का उपाय में सबसे तेज पतंजलि योग दर्शन है। पतंजलि महाराज हुए हैं, उन्होंने तीनों को शुद्ध किया है, शरीर को शुद्ध किए लिए चरकाचार्य हुए, चरक सुश्रुत वाग भट, ये आयुर्वेदिक ग्रंथ नामी ग्रंथ है, उनके जोड़े का ग्रंथ नहीं है। वाणी को शुद्ध करने के लिए महाभाष्य है जो अष्टाध्यायी पर व्याकरण का, तो उनके जोड़ी का अभी तक पंडित हुआ नहीं है। वे पत्ते लिखे थे, पुस्तक लिखे थे जिस पत्ते तार पत्ता, तो बकरी चढ़ गई, उतना अधूरे रह गया, अभी तक पूरा करने वाला पंडित नहीं मिला, कितने नामी हुए पतंजलि महाराज। व्याकरण में देखो तो शब्द व्यर्थ है, शरीर में देखो तो चरक है, और वाणी शुद्ध करने के लिए ये है, मन शुद्ध करने के लिए योग दर्शन, वाणी शुद्ध करने के लिए अवचन महाभाष्य, और मन शुद्ध करने के लिए योग दर्शन, उनके जोड़ी का कोई ग्रंथ नहीं है। ऐसे तीनों में विलक्षण हुए पड़ते, तो ये बात है। परंतु कर्मयोग में इतना विलक्षण विवेचन किसी ने किया नहीं जैसा शेठ जी करते थे। इस बात तो मैं कह देता हूँ कर्मयोग के आचार्य, लोगों को बुरी लगती है, भारी लगती है, क्या करता है बढ़िया की महिमा करता, मैं बढ़िया की महिमा नहीं करता हूँ, बढ़िया की महिमा वो कर जिसको धन की गरज हो। मैं ये नहीं कहता मेरे धन की गरज नहीं है, ये नहीं कहता हूँ मैं, पर धन के लिए मैं शेठ जी के पास नहीं आया हूँ, बेश यह धन मिल जाएगा, बढ़िया में धन होता है पास में जो अपने मिल जाएगा, इस आशा से मैं नहीं आया हूँ। शेठ जी में सब बातें थी, इनके सिवा और विलक्षण बातें थी। हमारे संत थे श्री चौकसनाम जी महाराज, बीकानेर में चौकसुराम जी महाराज वैद्य नामी वैद्य हुए हैं। गंगा सिंह जी ने कहा कि हमारे राज्य में ऐसे ऐसे वैद्य है, बहुत चतुर राजा हुए गंगा सिंह जी, ऐसे वैद्य थे, वे आए यहाँ सत्संग में, तो उन्होंने बात कही कि मैंने जहां आध्यात्मिक मार्ग में ऊंचे देखे तो व्यवहार में उतने नहीं, और व्यवहार में कुछ ले तो अध्यात्म मार्ग में नहीं, मैं सीधे में सीधे बात है व्यवहार भी कुछ, और ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग योग मार्ग ये देख लो, और व्यवहार में कई पंचायतियां जो बड़े बड़े बैरिस्टर वकील उसमें जोर लगा लेते हैं साधे, वो शेठ जी ने किया है ऐसा, कई फैसला लिखा है उन्होंने उन ग्रहों में, तो आप देखो तो ऐसे बड़े बड़े वकील नहीं लिखा सकते, इस झगड़ा दुआ कर दिया, नहीं तो आपस में सिर फूटे और राज में झड़ता रहे, ऐसे आदमी की लड़ाई में चाहिए तो व्यवहार में भी इतना कुशल और परमार्थ में भी इतना बड़े ऐसा मैंने देखा। ये सौ सुना महाराज ने कहा, जहां कहीं देखा है मैंने, संत महात्मा बहुत ऊंचे दर गए पर व्यवहार में इतने कुशल नहीं। इसको किसी में देख लोगे, सेठ में एक लक्ष्य था, ऐसी गतम बातें थी सेठों में, अलौकिक बातें थी। तो उनके ऐसे हुए ग्रंथ हैं, इनके लिखे टीका गीता जी है, बहुत विचित्र ग्रंथ। तो उनसे मैंने शिक्षा पाई है सेठ जी।